अगली सूरत एक ऐसी हस्ती के नाम है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद कहा कि इब्राहिम एक इंसान नहीं, एक उम्मत है। वो काम जो सारी दुनिया के लोग मिलके ना कर सके, वो इब्राहिम ने कर दिया। सूरत नहल में इनकी ये खूबी आएगी। सूरत इब्राहिम के नाम पे है ना, तो पूरी सूरत में सब्र और शुक्र का जिक्र है। सब्र शुक्र, सब्र शुक्र, और अंधेरों से रोशनियों का सफर आप इस सूरत में देखेंगे। पहली आयत से लगेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रो, किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख्रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया ताकि आप लोगों को तारीखियों से निकाल कर रोशनी में लाएं, उनके रब की तौफीक से। हाईलाइट करें, पूरे कुरान में कुरान की जितनी खूबियों का जिक्र है ना, सबसे ज्यादा ये आयत कुरान के बजाय नज़ूल को बताती है। वाई अल्लाह ताला रिवील दिस बुक ताकि लोग अंधेरों से रोशनी में आ जाए। कुफर के अंधेरे, जहालत के अंधेरे, दुनिया परस्ती के अंधेरे, बुगज कीनों के अंधेरे, ये किताब असल में लोगों को रोशन ख्याल बनाती है। आप कह लें कि कुरान की आयतें इल्यूमिनेट भी करती हैं और इनलाइटन भी करती हैं। अगर किसी को रोशन ख्याल बनना है, ऑप्टमिस्टिक बनना है, तो इस किताब से जोड़े ताल्लुक। आज लगा इस किताब से कटने वाले मॉडर्न हैं, वो बड़े रोशन ख्याल हैं जो बड़े तारीख किस्म के नज़रियात पेश करें, और ये खूबसूरत मसाइल बताने वाली किताब वाले आज दुखी हैं। तो आप पूरे फख्र और यकीन के साथ दुनिया में चलें फिरें कि ये किताब आपको मॉडर्न बनाती है। लेकिन ये होता अल्लाह की तौफीक से है। किधर बुलाती है ये किताब? इला सिरात अज़ीज़ुल हमीद, इनके रब की तौफीक से इस जात के रास्ते पर जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद हैं और जमीन आसमान की सारी मौजूदात का मालिक है, और सख्त तबाकुन सजा है कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए जो दुनिया की जिंदगी को आखरत पर तरजीह देते हैं। हाईलाइट करिए, इस आयत में दुनिया के पीछे भागना और उस मतलब उसको हर कीमत पे लेना आखरत को छोड़कर, इस शख्स को काफिर कहा गया है। आप तो जल्दी में नहीं समझेंगे, हाईलाइट कर लें, बाद में जाके इसको पढ़िएगा। यानी दुनिया की मोहब्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। कौन लोग हैं जो दुनिया की जिंदगी को आखरत पर तरजीह देते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, मैं किसको तरजीह देती हूँ, व्हाट आर माई प्रायोरिटीज, मेरे गम मेरे हम क्या हैं। जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये रास्ता इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए, ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए। अल्लाह मला तजलना मिनू। देखिए अभी दुनिया थोड़ी होती है ना, तो दीन की तरफ आना आसान है, इट्स ओके। थोड़े दूर चले जाते हैं ना, तो फिर तो अल्लाह ही लाए तो बंदा आता है, क्योंकि ये ऐसे ही जैसे आप सीधे चल रहे थे ना, आप रास्ता पलटते हैं, थोड़ा सा दूर है ना, आप एक यू टर्न लेके वापस इसी रोड पे आ जाएंगे, और रास्ता पलट के आप किसी और रोड से पता नहीं कहाँ के कहाँ चलेंगे, आपको तब रास्ता भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो इस वक्त लॉस्ट हैं दुनिया में, जो कुरान के नाम से गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या कुरानिक फोबिया, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, बस सुनो, दैट्स इट, सिर्फ इसको ज़ाती तौर पर पढ़ो। तो ऐसे लोग रास्ते से उतरे हुए, हमने इन तक पहुँचना है, और अपने भी दीन के तहफ़्फ़ुज़ की यही सूरत है कि हम दूसरों की हिदायत की फिक्र करें। फरमाए हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा, इसने अपनी कौम ही की जुबान में पैगाम दिया ताकि वो इन्हें खोल खोल कर अच्छी तरह बात समझा दे। क्या समझ आई? कि किताब अपनी जुबान में समझ आती है। आज उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर फिर गैर अरब लोग किस जुबान में पढ़ते हैं? कितना कम रिवाज है इस किताब को अपनी जुबान में पढ़ने का। और इस वक्त आप सब कितने खुशकिस्मत हैं कि आप अपनी जुबान में इस किताब को पढ़ और सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी वैल्यू पहचानने वाला बना दे। फिर अल्लाह जिसे चाहते भटका देता है और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्शता, और वो बाला दस्त और हकीम भी। यानी सुन के भी सारे कोई नहीं अमल करेंगे, लेकिन चले सुन तो लिया ना, तो तौफीक मांग लेते हैं कि अल्लाह किताब पढ़ने के बाद ना भटकाना। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं, इससे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीखियों से निकाल कर रोशनी में लाओ, और इन्हें तारीख इलाही के सबक आमोज वाक्यात सुनाकर नसीहत करो। इन वाक्यात में बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला है। कौन सा सब्र करना है उम्मत मुस्लिमा ने? दुनिया का सब्र, हराम का सब्र, एक्सेसिवनेस का सब्र, टाइम वेस्टिंग का सब्र, और शुक्र किस पे करना है? जो मिल गया, जो है उसका शुक्र। हम ऑपोजिट चाहते हैं, आप देखिए कि दुनिया की जो नेमतें हमें अल्लाह ने दी है ना, ये किस्म का हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक है। हम इनसे अपनी आंखें ठंडी करते हैं। हम यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, थक जाते हैं, दिल भी लगता है, अच्छा फिर घर याद आता है, घर जाते हैं। अब जिनके बच्चे हैं वो बच्चों को मिलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, शौहर है उनसे मोहब्बत की बात हुई, बड़ों को देखा, फिर फ्रेश हो जाते हैं, फिर खिलाते पिलाते हैं रात को सब, मजे से बातें की, सो अगले दिन हम फिर फ्रेश होके आ जाते हैं। अगर ये बच्चे घर, बच्चे घर नेमते ना, तो हमारी जिंदगी कितनी बोझल हो। वो लोग घरों से निकलते ही नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं जिनके पास ये रिश्ते नहीं होते। तो इन नेमतों को इंजॉय करें, और इनको इंजॉय करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनको भी अपने साथ उन रास्तों पे लगा लें कि जिसमें आप लगेंगे। और आप याद रखिए कि शुक्र जो है ना, ये जिंदगी को शुगर वाला बना देता है, स्वीट बना देता है, और दुनिया की नेमतें अच्छी लगती हैं। शुक्रगुजार आधे ग्लास पर भी शुक्र करेगा, और ना शुक्रा बंदा आधे ग्लास को देखेगा, बल्कि शुक्रगुजार इस पर भी शुक्र करेगा कि अल्लाह शुक्र है आधा ग्लास खाली था, पूरा भरा होता तो मेरे कपड़ों पे जूस गिर जाता। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये कुरान हमें सिखाता है। अजियत देने वाले पर आप शुक्र करेंगे कि उसने आपको नेकी का मौका दिया, सब्र का मौका दिया, तो ये किताब हकीकत में आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करती है। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की से एहसान को याद रखो जो इसने तुम पर किया, इसने तुमको फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त तकलीफें देते थे, तुम्हारे लड़कों को जिबा करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा बचा लेते थे, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश थी। क्या पता चला हुक्मरानों का जुल्म अल्लाह की आजमाइश होती है। और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया, क्या आयत 7 हाईलाइट कीजिएगा, लाइन शकर तुम लाजीद अन्नकुम वाला इन कफर तुम इन नाजा बिल शदीद, बड़ी फेमस आयत है। अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा नवाजूंगा, और अगर कुफराने नेमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। सच है कि नहीं? आपकी दोस्त आपको खाना पकाकर भेजे और आप खा के वाह क्या मजे का खाना था, बहुत ही अच्छा लगा, अगली दफा क्या करेगी? आप किस्से का पहले से डाल लेगी, आपको अच्छा लगा ना, वो आपको जरूर दिख जाए दाल चावल ही क्यों ना, आप कहेंगे बहुत मजे के लगे। इस वक्त आपको ये भी बड़े अच्छे लग रहे होंगे सोच के। जब हम लोगों की कदर करते हैं नेमतों की, तो वो और देते हैं, और अगर वो आपको खाना भेजे और अगले दिन आए तो देखे ट्रैश में पड़ा हुआ, क्या हुआ? हम नहीं खाते, मुझे अच्छा नहीं लगा आपका खाना। क्या कभी अगली दफा भूले से भी आपको वो खाना भेजेगी? मेरे लिए कोई भी नहीं भेजेगी। तो ये है, शुक्र से नेमत बढ़ती है, और यकीन करें शुक्र नेमतों पे मोहर है, स्टैंप लग जाती है। चलिए जरा आइए इस वक्त अपने इस कुरान की नेमत पे दिल से शुक्र करें, तो क्या होगा फिर, ये नेमत फट जाएगी। सोच के शुक्र करिएगा, कितने लोग हैं जो शुक्र करते हैं इस नेमत पे कि अल्लाह ने हमें कुरान से जोड़ा हुआ है। तो दिल से सारे एक दफा इकट्ठे कहें अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतनी अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतनी, सिर्फ इतनी, ये तो कुछ भी नहीं है उस नेमत के मुकाबले में जो हमें मिल रही है। फिर कहें आपकी इस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक औरत की बात याद आएगी जो मुस्लिम हुई, तो उसने कहा कि मैं इतनी खुश हूं इस्लाम के मिलने पे, मेरा दिल करता है मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पे खड़े होकर जितना ऊंची कह सकूं लोगों को कि दिखाऊं कि लोगों में बहुत खुश हूं मैंने क्या पा लिया। वल्लाही जब हमें इस दौलत का एहसास होता है ना, तो फिर हम खामोश नहीं रह सकते, ढीले डाले नहीं रह सकते। फिर कहें एक बार, इसका तो बोल सकते हैं इतना ऊंची, जब तिलावत होती है तो क्यों नहीं बोलते? अल्लाह ताला हमें अपना शाकिर बंदा बना ले। अल्लाह अकबर। और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया कि अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा नवाजूंगा, और अगर कुफराने नेमत करोगे तो मेरी सजा बड़ी सख्त है। और मूसा ने कहा अगर तुम कुफर करो और जमीन के सारे रहने वाले भी काफिर हो जाएं, तो अल्लाह बेनियाज है, अपनी जात में आप महमूद हैं। सच है कि नहीं? उसको जरूरत नहीं है हमारी शुक्र की, वो तो पहले से चोजन है। क्या तुम्हें इन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, कौम नूह, आद, समूद और इनके बाद आने वाली भी बहुत सी कौमें जिनका शुमार तो अल्लाह ही को मालूम है, इनके रसूल जब इनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हम इसको नहीं मानते। ये भी नोट करें, हमेशा लोगों को सच कड़वा लगता है, और जिस चीज की तुम हमें दावत देते हो इसकी तरफ से हम सख्त शक में मुबतला हैं। ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے. سوچی، اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کی اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں کہ جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، اور جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے. اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، لکھ لیں پیئر پریشر، اور ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، ڈیپوٹیشن، ڈیپورٹ کر دیں گے اگر آپ اپنی حرکتوں سے بات ہیں. تھریٹنگ دونوں ہی چیزیں ہیں نا. تو کیا ہوا؟ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. تو کس کی بات سچی؟ اللہ کی کہ بندوں کی؟ اللہ کی. تو اس سے ڈرنا ہے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو، یہ انعام ہے اس کا جو میرے سامنے جواب دینے سے خوف زدہ ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے. اب ذرا ان آیتوں کو لفظوں کے ساتھ دیکھ لیں، جہنم کیسی ہے. پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے، وہاں انہیں کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، زخموں کا دھون، پیپ، پس ملی ہوئی، گاڑی، تھک، بدبودار، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا، کون پیے اس کو اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے والا نہ ہوگا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو بنا ہوا ہے. سوچیے ذرا، کوئی پی سکتا ہے یہ؟ اور کیا یہ حق ہے کہ بس ایسے ہی ڈرایا ہوا ہے؟ ایگزیجریشن ہے، قرآن کی آیت ہے. تو جہنم میں جہنمیوں کو زخموں کی دھوون پینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کتنے تھوڑے دن کی دنیا ہے، اور نہ ختم ہونے والی جہنم لے کر دنیا کو پا بھی لیا تو کیا فائدہ کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں اعمال کے ضائع ہونے کی مثال دے رہے ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کسی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کا راہ کھونا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کو حق پر قائم کیا؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، اور ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں. سب ضائع، جیسے سراب ہے نا، معراج. کافر کی نیکیاں ایسی ضائع ہو جائیں گی، کچھ بھی تم کو نہیں ملے گا. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، وی وار ڈیپینڈنٹ. یہ کس کمزوری کی بات ہے؟ جسمانی کمزوری نہیں، ایمانی کمزوری، اخلاقی کمزوری. جو دنیا کی چمک دمک سے امپریس تھے، جن کی ول پاور بڑی ویک تھی، جذباتی طور پہ کمزور تھے، عقیدے کمزور تھے، حق کو دیکھتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے، پھر عمل نہیں کرتے تھے، لوپ ہولز ڈھونڈتے تھے نہ عمل کرنے کے، بہانے ڈھونڈتے تھے، دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے تھے، کوئی ایسا دین سکھا دے کہ نہ ہجرت ہو، نہ جہاد ہو، نہ لائف سٹائل بدلے اور ثواب ہو، اپنے کمفرٹ زون کو نہ چھوڑنا پڑے. وٹ ایور وی وانٹ لے لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. کوئی یہ کہہ دے یہ آج ٹائم باؤنڈ ہے، کوئی بات نہیں، یہ فلاں حکم، یہ اختلافی ہے، چھوڑ دو اس کو، نو پرابلم. یہ امریکہ میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، یہ نہیں وہ نہیں، ڈونٹ وری بی ہیپی، بس پڑھو، سود کھاؤ، پیو، جو مرضی کرو، تم مجبور ہو. کل ایسے کمزور تھے جب دوسروں کی باتوں پہ کہیں گے اللہ، جاتے تھے فلاں کے درس میں، پکڑ اس کو، अब देखिए जरा आयत में कैसे उनको जाके वहां जहन्नुम में दिलवाना चाह रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो बड़ों से जाके कह रहे हैं, हम दुनिया में तुम्हारे पीछे लगते थे, तुम्हारे दर सुनते थे, तुम्हारी स्पीचेस, तुम्हारे शोज ने हमारी आंखें बंद की हुई थी, अब क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमको बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हो? जवाब सुन लीजिए। कौन जवाब देंगे? वही जो दीन को इतना डायल्यूट करके पेश करते थे, वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें निजात की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुम्हें भी दिखा देते। हम तो खुद भटके हुए थे, हमारी तो अपनी आंखों पे ख्वाहिशों की पट्टी पड़ी थी। अब तो यकसा है कि ख्वाह हम जजौ फजा करें या सबर करें, बहरहाल हमारे बचने की सूरत कोई नहीं है। क्या बनेगा उस वक्त? कहते हैं ना कि जिनकी उम्मीद पे गुनाह किए वो खुद हमें उस वक्त धोखा दे गए।